الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت شیخ حسین بن احمد بستامی قدس سرہ السامی نے فرمایا، میں نے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز وجل، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھا کہ بہت ہی شاندار حالت میں ہیں۔ میں نے سوال کیا، ابو صالح علیہ رحمت اللہ نافع، ذرا مجھے یہاں کے حالات تو بتاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک اور برباد ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے تحت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ شریف میں یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، 31 ٹائم بار بار نعمتوں کا ذکر فرمایا کر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت و ارشاد کا بہترین اسلوب ہے تاکہ سامع یعنی سننے والے کے نفس کو تنبیہ یعنی آگاہی ہو، اسے پتہ چلے اور اسے اپنے جرم و ناسپاسی یعنی ناشکری کا حال معلوم ہو جائے، اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے شرم آئے اور وہ ادائے شکر و طاعت یعنی شکر ادا کرنے اور عبادت کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں کو گنوایا، ان میں سمندر بھی ہے، اس میں دن بھی ہے، اس میں رات بھی ہے، اس میں کھجور بھی ہے۔ بے شمار نعمتیں ہم اگر اپنے اطراف کی طرف نظر دوڑائیں، خود اپنے بدن پر نظر دوڑائیں، تو ہمیں نظر آئیں گی کہ جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کس قدر ہیں، اس کا شمار یقیناً ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں آ چکا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکو گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شمار ہماری طاقت سے تو باہر ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کو جن کو شمار کر سکتے ہیں، مکمل نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن کو ہم فیلنگ اینالائز کر سکتے ہیں، جس کا ادراک کر سکتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے ان نعمتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है। तो नेमतें दो तरह की हैं, एक वो नेमतें जिन्हें हम अपनी कोशिश के नतीजे में अताए इलाही से हासिल करते हैं, और एक वो नेमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किसी कोशिश के बगैर ही हमें अता फरमा दी हैं। अब उन नेमतों का बयान शुरू होगा, उसमें से सबसे पहली नेमत जिस पर आज हम बात करेंगे वो नेमत क्या है, आइए सुनते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबी वाले सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो अंधा था और कोढ़ी भी था, उसके बदन के दोनों हिस्से मफलूज और हाथ पांव भी बेकार थे, फिर भी वो सब्र के दामन से लिपट कर ये कह रहा था कि शुक्र है खुदा का जिसने मुझे ऐसी बला से बचाया जिसमें बहुत से लोग मुबतला थे। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी बला थी, ऐसी कौन सी आजमाइश थी, ऐसी कौन सी मुसीबत थी जिससे तू बचा है। उसने जवाब दिया कि मैं उस शख्स से ज्यादा फायदे में हूं जिसके दिल में मारफत ईमान नहीं है। आप अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम सच कहते हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप जरा इमेजिन कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए ऐसे शख्स का कि जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसके जिस्म पर फालिज हो चुका, जिसके दोनों हाथ बेकार हैं, जो कोड़ी भी है, जिसके जिस्म पर मर्ज है कोड़ का, वो शख्स किस कदर आजमाइश और मुसीबत में मुब्तला होगा, लेकिन वो शख्स किस नेमत का शुक्र अदा कर रहा है, वो नेमत है मारुफत ईमान। तो कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि ईमान हमें अता किया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ईमान की नेमत तो अल्लाह का शुक्र है हमें मिली, इसके साथ साथ ये भी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सबसे महबूब नबी, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। चुनांचे मिश्कातुल मसाबी की हदीसे पाक है कि हजरत सैयदना बाज बिन हकीम अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम 70 उम्मतें पूरी करोगे, तुम अल्लाह पर उन सब से बेहतर और इज्जत वाले हो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी ने बड़ी ही ईमान अफरोज शरह फरमाई है, दिल के गानों से सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, यानी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल हैं, यूं ही आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। मजीद इरशाद फरमाते हैं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा तमाम नबियों के असहाब से अफजल, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन दूसरे नबियों के गैर नबी वालिदैन से अफजल, हुजूर अनवर के अहले बैत तमाम नबियों के अहले बैत से अफजल, बल्कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का मदीना मुनव्वरा दूसरे नबियों की बस्तियों से अफजल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजवाज पाक तमाम नबियों की अजवाज से अफजल। गर्ज ये कि अफजलियत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दम कदम से वाबस्ता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कि ये दो नेमतें हैं जो साथ साथ मिली हुई, ईमान और फिर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाना। क्या ये नेमत हमने रब ताला से तलब की थी या हमें बिन मांगे मिल गई? तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है कि इतनी बड़ी, इतनी अनमोल नेमत हमें बिन मांगे अता फरमा दी। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की हिफाजत की सोच अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में अगर फिल वक्त हम थोड़ा गौर करें, नजर दौड़ाएं, तो मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तरह तरह की इबादतें वो करते हैं और तरह तरह के उनके यहाँ निज़ाम जिंदगी जो अपने तई वो समझते हैं निज़ाम जिंदगी मौजूद है, हालांकि उनके निज़ाम में टोटल जिंदगी के मसाइल का हल मौजूद नहीं। लेकिन इस्लाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत अता की, हमें ईमान की नेमत अता की, हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वाहिद और सच्चा मजहब है जो हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबियों की जमानत देता है। वो इस्लाम जिसमें बच्चों, जिसमें जवानों, जिसमें बूढ़ों, जिसमें माओं, जिसमें बेटियों, जिसमें बहनों, जिसमें पड़ोसियों, हत्ता के इस्लाम के अंदर जानवरों तक के हुकूक के तहफ्फुज की जमानत दी गई है, वो इस्लाम जो बीमार की इयादत करने की तरगीब देता है, वो इस्लाम जो हमें गमजदा जिस शख्स को कोई तकलीफ पहुंच जाए, कोई दुख पहुंच जाए, कोई बीमारी पहुंच जाए, उसकी ताजियत अगर हम करें तो उस पर भी हमें सवाब मिलता है। इस चीज की तरगीब देता है कि भूखे को खाना खिला दो, इस चीज की तरगीब देता है कि बेलिबास को लिबास पहनाओ, इस चीज की तरगीब देता है कि राह में अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज मिले जिससे किसी को तकलीफ हो सकती हो, उस शय को रास्ते से हटा दो, तुम्हें इसका भी सवाब मिलेगा। तुम मुस्कुरा के अपने मुसलमान भाई की तरफ देखो, ये मुस्कुराना भी तुम्हें सवाब देगा। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये है हमारा मजहब इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, हमें ऐसा प्यारा मजहब अता किया, तो हमें चाहिए इस नेमत की कदर करें। ये इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा दीन है। चुनांचे पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में इरशाद होता है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। तफसीर खजानुर रिफान में हजरत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी लिखते हैं, इसके सिवा कोई और दीन मकबूल नहीं है। इन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है कि इसमें हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हम किस कदर खुशकिस्मत हैं। मैं उनसे मुखातब हूँ कि जो पैदा ही मुसलमान हुए, मैं उनसे भी मुखातब हूँ जो पहले कुफ्र के अंधेरों में भटक रहे थे, उन्हें इस्लाम का नूर नसीब हो गया, वो इस्लाम की आगोश में आ गए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये नेमत कैसी नेमत है, इस नेमत की कद्र हमें करनी चाहिए। जिस तरह एक शख्स जो कुफर के अंधेरों में भटक रहा हो, वो इस्लाम के दायरे में आ सकता है, इस्लाम के दामन में आ सकता है, इसी तरह कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनको बोलने के बाद वो शख्स इस्लाम से बाहर भी जा सकता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक तआला का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा, ईमान जैसी नियामत से नवाजा। लेकिन याद रखिए, ये ईमान हमें मिला, हमें इसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, इसकी हिफाजत की फिक्र भी करनी चाहिए, इसकी हिफाजत की सोच भी बनानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान ये नेमत, ये दौलत, ये अनमोल दौलत जिसका मोल ही नहीं, जी हाँ ये अनमोल दौलत है, ये शैतान कहीं ये दौलत हमारे हाथ से ना छीन ले, कहीं हम इस दौलत से महरूम ना हो जाएं। एक तवील हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात पर पैदा की गई, इसमें से बाज मोमिन पैदा हुए हालत ईमान में जिंदा रहे और मोमिन ही मरेंगे। पैदा भी मोमिन, जिंदा भी मोमिन रहे और मरने के वक्त भी मोमिन। बाद ऐसे हैं जो कुफर पर पैदा हुए, काफिर पैदा हुए, हालत है कुफर पर जिंदा रहे और काफिर ही मरेंगे, जबकि बाद मोमिन पैदा हुए, मोमिनाना जिंदगी गुजारी लेकिन हालत है कुफर पर रुखसत हुए, और बाद ऐसे हैं कि काफिर पैदा हुए, काफिर जिंदा रहे लेकिन मरने से पहले उन्हें ईमान की नेमत, ईमान की दौलत नसीब हो गई, वो मोमिन होकर मरेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने गौर किया, आपने सुना कि इस हदीस पाक में किस कदर इबरत के मदनी फूल हैं कि जो पैदा मुसलमान हो गया, जरूरी नहीं कि वो फौत भी मोमिन हो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमसे कोई ऐसा कलिमा कहलवा दे, हमसे कोई ऐसा अमल सादिर करवा दे जो ईमान के तकाजों के खिलाफ हो, जो अमल करने की बिना पर, जो कलिमा कहने की बिना पर हम ईमान के दायरे से ही खारिज हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे कलिमात से, ऐसे आमाल से बचाए। अगर आप इनकी तफसील मालूम करना चाहते हैं, आप शेख तरीकत अमीर आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुल आलिया की बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही अहम किताब है, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, इसका मुताला करें। इसकी तफसील जब आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ईमान की हिफाजत की फिक्र कितनी अहम है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान की जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं तो उन्होंने इस नेमत की हिफाजत के लिए कैसी कैसी मशक्कतें, कैसे कैसे तशद्दुद, कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त कर लिए, लेकिन इस ईमान की हिफाजत की। हजरत सईदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने ऐसे खौफनाक माहौल में इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम लाने की पादाश में शदीद मसाइब और आलाम से वास्ता पड़ता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लेकर आए उस वक्त उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे जो काफिर था। जब उसके कानों में आपके कबूल इस्लाम की खबर पड़ी तो आग बगोला हो गया। उसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाकर पूछा कि मैंने सुना है तुमने कोई और माबूद ढूंढ लिया है, सच सच बताओ तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी परस्तिश करते हो, किसकी इबादत करते हो। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुदा की। उसने कहा कि मुहम्मद के खुदा की परस्तिश यानी इबादत का मतलब यह है कि तू लात व उज़्ज़ा यानी ये इनके बुतों के नाम थे का दुश्मन बन गया है, सीधी तरह राय रास्ते आ जा वरना जिल्लत के साथ मारा जाएगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ईमान अफरोज जवाब दिया, सुनिए जरा गौर से, इरशाद फरमाया कि मेरे जिस्म पर तेरा जोर चल सकता है लेकिन दिल पर नहीं। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत और रिजा ही मेरी जिंदगी का मकसूद है, मैं तुम्हारे खुद साख्ता माबूदों को दुरुस्त समझूं और पूजूं, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। जब उमैया ने एक गुलाम की तरफ से इस तरह जब एक कलाम सुना तो गुस्से में पागल हो गया और कहने लगा, अच्छा फिर इस दीवानी का मजा चख और देखूंगा माजल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इनका खुदा तुझे कैसे छुड़ाते हैं। अब उस जालिम ने आप पर जो जुल्म सितम का सिलसिला शुरू किया, अब मक्का मुकर्रमा में कुर्रा की जमीन जो है ना गर्मी के सबब मशहूर है, ये गर्मी में तांबे की तरह गर्म हो जाती है, तांबे की तरह गर्म हो जाती है। अब उमैया क्या करता, दोपहर के वक्त हजरत सईदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उस जलती हुई रेत पर लिटा देता और एक भारी पत्थर आपके सीने पर रख देता ताकि हिल भी ना सके, फिर उन्हें मजबूर करता और कहता कि मोहम्मद की पैरवी से बाज आ जाओ और लात उज़ा के माबूद बरहक होने का इकरार कर लो वरना इसी तरह पड़े रहोगे। इसके जवाब में हजरत सईदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ईमान की कदर करते थे, जिन्होंने ईमान की नेमत की हिफाजत की ठान ली थी, उनकी जुबान से अहद अहद यानी खुदा एक है, खुदा एक है कि आवाज निकलती, ये मंजर सोचिए कि वो जुल्म सितम पर तुला हुआ है शख्स, तपती हुई रेत पर लिटाया हुआ है, भारी पत्थर सीने में रखा हुआ है कि हिलने भी ना दे, उसके बाद ऑफर करता है कि मेरी बात मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। उस वक्त कलिमाए हक का ऐलान करना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मोमिन हूं, मेरा रब मेरा माबूद एक है, किस कदर आजमाइश की बात है, किस कदर मुश्किल काम है। अब जब ये जवाब सुनता तो मैया गजबनाक होकर जवाब देता कि तू अहद अहद कहता है, तो एक दिन और एक रात आपको भूखा प्यासा रखता और तपती हुई रेत पर इनका तमाशा देखता रहता। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वो हस्तियां थीं जिन्हें मदनी आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्त अकदस पर इस्लाम कबूल करना नसीब हुआ, जिन्हें ईमान की नेमत नसीब हुई, इन्होंने इसकी ऐसी कदर की, इसकी ऐसी हिफाजत की। हजरत सैयदना खब्बाब रदिल्लाहु ताला अन्हो, ये भी उस जमाने में इस्लाम लाए कि जब मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अरकम रदिल्लाहु ताला अन्हो के घर मुकीम थे, चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। अब कुरैश ने हजरत खब्बाब रदिल्लाहु ताला अन्हो को इतना सताया कि कोयले के अंगारे उस पर आपको सीधा लिटा दिया और एक शख्स इनके सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया, यहां तक के आपकी पीठ की जो चर्बी थी वो निकली, उस चर्बी की वजह से वो कोयले बुझ गए, आप घंटों बेहोश रहे, और फिर जब होश आया तो जुबान से कलिमा क्या निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बरसों बाद जब हजरत सैयदना खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये पूछते हैं और ये बयान होता है इनके सामने, हजरत उमर फारूक के सामने, तो हजरत खब्बाब अपनी कमर खोल के दिखाते हैं तो पूरी पीठ पर सफेद सफेद दाग और धब्बे पड़े हुए थे। उस मंजर को देखकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भर आता है और वो रो पड़ते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, ये पीठ कितनी मुबारक और मुकद्दस है जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बदौलत आग में जलाई गई है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये ईमान की हिफाजत, ईमान की नेमत को छीन जाने से महफूज रखने के लिए जुल्म और सितम बर्दाश्त करते थे, इस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ये नेमत लौटाने पर, इस नेमत से महरूम होने पर तैयार नहीं थे। आप सहाबाए किराम की सीरत को जरा निकाल के तो देखिए, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने जब इस्लाम कबूल किया था ना तो आपको चटाई के अंदर लपेट कर मारा जाता था, लेकिन आपने ईमान की नेमत से महरूम होना गवारा नहीं किया था। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान जिन्होंने नेमत ईमान की हिफाजत की, वो लोग दर्स हासिल करें, वो लोग सबक सीखें इससे कि जो किसी मुल्क का वीजा लेने के लिए, किसी जगह दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए पहले होते हैं मुसलमान हैं, लेकिन खुद को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके फिर इस्लाम के दायरे से ही बाहर निकल जाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, साहबकराम अलैहिमुर रिदवान की चंद हिकायात आपने सुनी कि जिसमें उन्होंने ईमान की दौलत, ईमान की नेमत से महरूम होना गवारा न किया, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लिया। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के बाद अगर देखें तो बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की जिंदगी में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं, और बेशुमार वाकयात ऐसे कि जिसमें ईमान की हिफाजत, ईमान के तहफ्फुज के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लिए, लेकिन ईमान की दौलत, ईमान की नेमत से महरूम होना गवारा ना किया। एक हिकायत बहुत सबक आमोद हिकायत है, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अले क्या दौरे खिलाफत था, शाह रूम के पास एक कासिद भेजते हैं, ये कासिद बादशाह के पास उठा तो घूमता घूमता ऐसी जगह पहुंचा जहां से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी और चक्की पीसने की आवाज आ रही थी। अब ये शख्स, ये कासिद जो था, उस कैदी के पास पहुंचा और सलाम करने के बाद उसके हालात दरियाफ्त किए तो उसने बताया कि मुझे फुला जगह से कैद किया गया था और शाहे रूम के सामने पेश किया गया, तो बादशाह ने मुझे दावत दी, मुझे कहा कि मैं नसरानी यानी क्रिश्चियन हो जाऊं, मगर मैंने इनकार कर दिया। बादशाह ने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आंखें निकाल दी जाएंगी, मगर मैंने दीन को आंखों पर तरजीह दी। चुनांचे उन्होंने गरम सलाइयां लगाकर मेरी आंखें जाया कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ कैद खाने पर पहुंचा दिया। रोजाना कुछ गंदम पीस लेता हूँ जिसके इवज मुझे कुछ खाना दे दिया जाता है। जब ये कासिर वापस हजरत सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचता है और ये वाकया बयान करता है, तो आपकी आंखों से आंसुओं का चश्मा गोया कि उबल पड़ता है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह रूम के पास दोबारा कासिद भेजते हैं और फिर उसे ये पैगाम भेजते हैं कि मुझे फुलां फुलां कैदी के बारे में मालूम हुआ है, मैं अल्लाह अज्जा वजल की कसम खाता हूँ कि अगर तुमने रिहा करके उसे मेरे पास नहीं भेजा तो मैं फिर मुकाबले के लिए ऐसा लश्कर भेजूंगा जिसका अगला सिरा स्टार्टिंग पॉइंट तो तुम्हारे पास होगा और एंडिंग पॉइंट मेरे पास होगा, इतना तवील लश्कर होगा। बहरहाल फिर आपने उस कैदी को रिहा करवा लिया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि किस तरह ईमान की हिफाजत के लिए जुल्म और सितम बर्दाश्त किए हमारे बुजुर्गाने दीन ने। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। तरह तरह के कलिमात माज अल्लाह ये फिल्मों में, ड्रामों में, और तरह तरह की रसाले और ये जो डाइजेस्ट इनमें भरे पड़े, गानों में भरे पड़े, इनसे बचिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कलीमा हम अपनी जुबान से बारदा और रगबत कह दें कि जिससे हम भी ईमान की दौलत से महरूम हो जाएं। तो हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। ऐसी नेमत है कि इस नेमत की बदौलत दुनिया में भी हमें अमन नसीब होगा, कब्र में भी राहतें मिलेंगी और मैदाने महशर में भी अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता से हमें बहुत सारी आसानियां मिलेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की नेमत की हिफाजत करने की सोच और फिक्र अता फरमाए और उस नेमत को ऐसा हमारे साथ रखे कि हम पैदा भी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हुए, हम जिंदा भी मोमिन हैं, और हम जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान की दौलत, ईमान की नेमत साथ लेकर जाएं। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।